प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता।
सप्ताह के श्रोता अर्पा रेडियो का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बातचीत करते हैं श्रोताओं के साथ, जानते हैं उनके आसपास की बातें, उनके गांव की बातें, उनके परिवार की बातें और सुनते हैं उनकी पसंद के गीत। अर्पा रेडियो में ढेर सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं और आज श्रोताओं से बातचीत करने का क्रम हाफ सेंचुरी पूरी कर रहा है। जी हाँ, आज का कार्यक्रम हमारा 50वां एपिसोड है और आज के इस कार्यक्रम में कौन है हमारे साथ, इसका है आप सभी को इंतज़ार। बस इंतज़ार के पल चंद क्षण और। शुरू करते हैं आज का ये 50वां एपिसोड। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने का।
एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सिमरा के हमारे प्रिय श्रोता श्री प्रदीप जैन जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद मैडम।
प्रदीप जी, जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम है सप्ताह के श्रोता, इसमें हम हर सप्ताह अलग अलग श्रोताओं से बात करते हैं, उनकी पसंद, उनकी रुचि अभिरुचि जानते हैं और उनके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप हमारे श्रोता हैं सप्ताह के, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपकी इस रेडियो की शुरुआत हुई, श्रोता बनने की शुरुआत आपकी कब से हुई।
मैडम, क्या है कि सन 1970 के आसपास की बात है, उस समय रेडियो सैलून को बहुत बोलबाला था।
जी
जी हाँ, और उसी समय मैं करीब यहाँ तक 7th या 8th में पढ़ता था, तो उसमें आपके केसी वाजपेयी जी थे आकाशवाणी रायपुर में, उनका चौपाल का उनका एक प्रोग्राम हुआ था सिंगा ग्राम पंचायत में।
अच्छा।
2 अक्टूबर को उसमें वो आए थे, चिंगने से थे, धोती पहनते थे, है ना, उनसे परिचय हुआ उस समय। उसके बाद फिर कल्पना मैडम, कल्पना यदु जी, उन्होंने मेरा पहला फरमाइशी पत्र शामिल किया था आकाशवाणी रायपुर से।
अच्छा, ये कौन से सन की बात रही होगी?
मेरे ख्याल से 70 के आसपास की बात है मैडम।
अरे बाप रे, बहुत पहले की बात बता रहे हैं आप। तब आपकी उम्र कितनी हुआ करती थी प्रदीप जी?
मैं 8th में पढ़ता था उस समय।
8वीं में पढ़ते थे आप? हाँ हाँ।
उस समय ऐसा था कि जिस समय छत्तीसगढ़ी का बांस गीत बजता था तो पूरी रोड जाम हो जाती थी।
बिल्कुल, और उस समय रेडियो का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था, लोग मतलब सुनने के लिए बेताब हुआ करते थे, अपने प्रिय उद्घोषक उद्घोषिकाओं से मिलना चाहते थे और अपने नाम सुनने के लिए, तो वो एकदम बहुत बोलना चाहिए क्रेजी हुआ करते थे उस दौर में।
जिस श्रोता का नाम रेडियो में आ जाता था, हाँ, समझ लीजिए उसके लाटरी लग जाती थी उसकी।
बिल्कुल, वो सेलिब्रिटी हो जाता था पूरे गाँव भर का, शहर भर का।
जी हाँ।
बिल्कुल, तो ये सफर आपका सन 70 के करीब आसपास शुरू हुआ और आज तक बदस्तूर जारी है ना?
जी हाँ, बहुत चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है।
जी जी, तो 70 से लेकर अभी तक के जो मैं आपके रेडियो सफर में, जब आप एक श्रोता के रूप में जाने जाते हैं, आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं रेडियो में और फरमाइशी कार्यक्रमों में, और कुछ अलग से कुछ चीजें आपको जो महसूस होती हैं वो हमारे श्रोताओं को कुछ शेयर कीजिए।
सबसे पहली बात तो मैडम क्या है कि अर्पा रेडियो परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, जिन्होंने मेरे को चांस दिया हफ्ते श्रोता के लिए।
हम आपकी ये बधाई पूरी अर्पा टीम को पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से।
वैसे सब मैडम, छत्तीसगढ़ के जितने भी श्रोता हैं कहीं से भी हों, वो रेडियो में एक इंडिया में क्या बाहर भी बहुत बड़ी इनकी क्रेज है, ऐसा कोई श्रोता रेडियो स्टेशन नहीं हो जिसका ही नाम ना आता है छत्तीसगढ़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अपने बिलासपुर से धर्मदास माधवानी जी वरिष्ठ श्रोता है, पहले श्रोता सम्मेलन कराए थे बिलासपुर में।
अच्छा, ये कौन से सन में हुआ था प्रदीप जी?
ये मेरे ख्याल से 72 के बाद ही की बात है जहाँ तक, और उस समय ज्योति परमार जो है ना एसएलबी में, पिताजी जो राम तेरी गंगा वाले में काम भी किए थे, कुछ नाम बोल रहे उनका, बलविंदर जी ऐसा कुछ नाम था शायद।
अच्छा,
उन्होंने वहाँ शिरकत की थी।
अरे वाह।
उसके बाद फिर आपके छेदु भाई जो है, छेदूलाल यादव रायपुर में,
बिल्कुल बिल्कुल,
सम्मेलन कंटिन्यू करते आ रहे हैं।
हाँ हाँ।
इसी कड़ी में परसराम साहू जी हमारे प्रेसिडेंट है छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के, उन्होंने भी लगातार किया, उसमें विविध भारती से कमल शर्मा जी और राजेंद्र त्रिपाठी जी, भाटापारा में भी जो हरमिंदर चावला के देख रेख में हुआ था प्रोग्राम, उसमें कमल शर्मा जी और राजेंद्र त्रिपाठी जी पधारे थे। ये श्रोताओं का एक समूह है, ये छोटी मोटी बातें होती रहती है मनमुटाव वाली, और जब संवेदन होता है तो आपको एक अलग ही छटा नजर आती है वहां पे। देहात से देहात से पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी पहुंचते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं क्या है कैसा है करके।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये सम्मेलन और ये श्रोताओं का एक समूह है, यही तो इनका जो स्नेह है, यही तो हमारे रेडियो के प्रोग्राम की जान है। अगर आप श्रोता नहीं रहेंगे तो हमारे रेडियो को कौन सुनेगा, कौन उसको पसंद करेगा? मतलब सही मायने में रेडियो को पॉपुलर करने वाले आप जैसे श्रोता ही तो हैं।
नहीं सर, मैडम मैं तो अपनी जगह जैसे भी हूँ, रेडियो श्रोताओं छत्तीसगढ़ के मैं बहुत बड़ा सम्मान समझता हूँ।
बिल्कुल,
छत्तीसगढ़ श्रोताओं का वो तो ऐसा होता है मैडम, किसी कारण से मैं नहीं सुन पाया, आप नहीं सुन पाया तो आपको रिंग करके बताएंगे आपका नाम आया था, आपके प्रोग्राम में चला था, और आज तो आधुनिक युग में व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप में डाल देते हैं रिकॉर्डिंग करके। ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है,
बहुत अच्छी हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप लोगों की यूनिटी इसी तरह बरकरार रहे, आप एक दूसरे से इसी तरह कड़ियों की तरह आप जुड़े रहें और आपसी सौहार्द प्रेम मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ रहें, हमारी तो यही कामना है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि एक श्रोता दूसरे श्रोताओं को अपने नाम बताता है, दूसरे श्रोता तीसरे श्रोताओं के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि भाई हमारा नाम इस कार्यक्रम में नहीं आया, हमारा इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है जब पता चलता है कि श्रोता हमारे कार्यक्रम को इतने रुचि से सुनते हैं। जी, तो प्रदीप जी यहाँ सुन लेते हैं हम आपकी पसंद का एक गीत। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
मैडम तकदीर क्या है, आइए बाहर को हम बांट लें।
बहुत ही प्यारा गीत है प्रदीप जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म तकदीर का ये प्यारा सा गीत।
Thank you.
के श्रोता में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे सिमगा के श्रोता श्री प्रदीप जैन जी का। प्रदीप जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है।
धन्यवाद मैडम।
प्रदीप जी, हम आपके बारे में अब जानना चाहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं और आप क्या करते हैं?
मैडम, मेरे परिवार में हम लोग 5 सदस्य हैं। श्रीमती जी हैं, एक लड़की है मोनिका जैन, जो आपके आकाशवाणी में चौपाल कैंपियर है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी सखी भी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं वो।
एक लड़का है मेरा, वो भी नाती भी हो गया है अब
जी।
और एक छोटा भाई, और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर।
अच्छा।
और साथ में मेडिकल स्टोर एग्रीकल्चर देखते हूँ सर। ये
बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या MBBS डॉक्टर हैं?
नहीं मैडम, मैं BAMS हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर।
अच्छा, आप BAMS है, जनरल प्रैक्टिशनर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात बताई प्रदीप जी आपने। और किनको किनको रेडियो का शौक रहा आपके घर में, आपके अलावा? आपकी तो खैर बिटिया का आपने नाम लिया, वो तो हमारे साथ जुड़ी ही हुई है, उसके अलावा और कौन कौन पसंद करते हैं रेडियो सुनना आपके घर में?
बात निकल के मैं बताता हूँ, जिसमें CP था नागपुर, उसे MP नहीं बताता, उसमें हमारे पिताजी थिएटर चलाते, ओपन थिएटर बोलते, उसमें चलाते थे, उसमें लाइसेंस बनता था CP नागपुर से, और कलेक्टर को एक सूचना देने पड़ती थी कि अमुक जगह हम कैंप लगा रहे हैं करके। तो हमारे पिताजी उस समय थे, उस समय पूरे, उसके बाद फिर सरपंच हुए वो यहाँ के, है ना। उसके बाद फिर हम जब से हो सवाल है तब से सुन रहे, हमारे परिवार में प्राय सभी सुनते हैं।
अच्छा, तब उस जमाने से सुना जाता था रेडियो?
रेडियो जितना बड़ा रेडियो तो बड़ा आदमी माना जाता था उस जमाने में।
क्या बात है। तो मतलब आपका बचपन तो रेडियो सुन सुन के ही हुआ है, आपका बीता है बचपन कहा जाए तो, एक तरह से आपके पिताजी भी सुना करते थे, कह रहे हैं तब से लेकर अब तक आप सुनते ही आ रहे हैं रेडियो को। श्रीमती जी क्या करती है? प्रदीप जी आप क्या?
वो होम का पूरा काम देती, घर के गृहिणी है।
अच्छा।
बेटा जो है कि वो चलाते है, NGO चलाता है, SBI का।
अच्छा।
इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगा, मैं भी 80 से लेकर के करीब 30 साल तक टॉकीज भी चलाया हूँ।
अच्छा, कौन सी टॉकीज?
वर्धमान टॉकीज करके, यहीं पे ओपन टॉकीज थी, है ना, इसी नाम से वर्धमान रेडियो श्रोता संघ को मैं भी गठन किया हूँ, छोटा सा एक।
और बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो हमको एक नई जानकारी आपके माध्यम से सुनने को मिली, जानने को मिली।
जी हाँ, जय संतोषी वहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसी पिक्चर से लास्ट में बंद भी हुआ टाकी हमारा।
अच्छा, और वो पिक्चर उस जमाने में इतनी हिट पिक्चर थी, कहते हैं कि लोग अगर देखने आते थे उस पिक्चर को तो उसपे पैसे तक चढ़ाते थे पर्दे में।
मैं आपको बताऊंगा जी, रायपुर में शारदा टाकी बाद हमारे यहाँ लगी थी। उसके समय कवर्धा से बेमेतर सब गाड़ी होता ना देहातों में, बैलगाड़ी वगैरह, उसमें बैठ के आते थे, उसी समय विद्युत कटौती शुरू हो गई चल होना, तो पब्लिक जो 6 बजे घुसती थी तो 6 बजे शाम तक सुबह तक बैठे रहते देखने के लिए। जमाना और टिकट दर कितना था मालूम आपको? 50 पैसे, 60 पैसे, ऐसे।
क्या बात है, क्या बात है, वो दौर
तो देखने को मिलता आज।
सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो दौर में एक बहुत एक अलग तरह का क्रेज था लोगों में, मतलब वो पिक्चर को देखने के लिए, जय संतोषी माँ को देखने के लिए एक हुजूम लग जाता था, भीड़ की भीड़ जमा हो जाता था,
मेला टाइप का लगता था, मेला
टाइप का लगता था, और पूरी टॉकीज फुल हो जाती थी, तब भी लोग घुसना चाहते थे, खड़े होकर देखना चाहते थे। ये तो बहुत अच्छी बात, आपका तो खैर टॉकीज चलता था तो आपने तो प्रत्यक्ष रूप से इस चीज देखा होगा, हमने तो पेपरों में पढ़ा था कि ऐसा होता है। और कोई किस्से जो आपको उस दौर के ऐसे सिनेमा के समय के और रेडियो के समय के आपको कुछ पता हो तो वो भी साझा कीजिए, क्योंकि आप तो टॉकीज कहलाते थे।
क्या मैडम, जैसे कि जितने भी पुराने श्रोता हैं उनको मालूम है कि जो रेडियो पहले आता था ना वाइब्रेटर वाला आता था, वैरायटी की 90 वोल्ट की बैटरी लगती थी, मुश्किल से 2 घंटे चलता था वो।
अच्छा।
उस जमाने में, और उसके बाद फिर AC/DC आया, आज की तारीख में तो अपने मोबाइल पे आ गए,
मोबाइल पे आ गया। हाँ,
आधुनिक हो गया पूरा। उस समय तो पूछो ही मत क्या होता था उस समय, और जो बुजुर्ग सीनियर श्रोता है वही आपको बता सकते हैं कैसे फीलिंग करते थे उस समय,
और उसको कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे रहते रहे होंगे
वो तो पूरे। जिस समय टीवी आया SCR-82 के बाद में, तो शनिवार को पिक्चर आती थी उसमें, तो फोन करने गुलशन गुलशन, तो उसमें क्या होता है पूरे लेडीज घर में आते थे हमारे, हम लोग सब बाहर रहते थे, एक जमाना था उस समय का। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे हुआ सबके घर टीवी हो गया है ना, और उसमें ये भी होता था हमारे बच्चे आते थे ना पूरा उनको मेंटेनेंस करना पड़ता था, जिसके घर में टीवी लगा उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि सब मेहमान बन के आते थे उस समय।
बिल्कुल बिल्कुल।
और उसके बाद भी क्या था, शनिवार को ना 4 बजे से बैठ जाते, उसमें 2 घंटे का आता था सिर्फ।
अरे बाप रे,
प्रोग्राम 2 घंटे आता था सिर्फ उस समय।
सही बात है, वो सब चीजें आज अगर सोचा जाए तो आज के समय के लोग इस बात को महसूस भी नहीं कर पाएंगे, जो दौर आपने देखा है, जो दौर आपने महसूस किया है उस समय के।
मैडम आज तो क्या कि एंटीना भी गोल हो गया ना, तो सेटेलाइट से चालू हो गया, पहले एंटीना दिखते थे घर की छत के ऊपर में,
हर घर में, और उसको सेट किया जाता था कि
सेट किया जाता था। रामायण महाभारत के टाइम में ऐसा था मैडम, एक जमाने में टीवी भी सेल करता था मैं, तो जिस दिन रामायण महाभारत आता उस दिन मतलब 10-10 सेट भी सेल करते थे, 20-20 आदमी रहते थे हम लोग।
अरे बाप रे,
एंटीना लगाना है, कोई एंटीना लगा रहा है, कोई टीवी लगा रहा है ऐसे। और उस जमाने में हम उड़ीसा से लाते थे टीवी कोणार्क का।
अच्छा
हाँ, उस समय इसी कोणार्क बेलटेक्स इस टाइप का था सब मार्केट में, तो मैं तो सपोर्ट करता था कोणार्क, मैं बहुत चलता था, करीब करीब मैं 4,000 से ज्यादा टीवी भी बेचा हूँ जमाने में।
क्या बात है, आप जब बता रहे कि आप टीवी की दुकान लगाते थे, तो ऐसा भी कभी हुआ होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वो महाभारत या रामायण आ रहा होगा, तब लोग आपके दुकानों में भी खड़े होकर टीवी खरीदने के लिए खड़े होकर देखते होंगे कार्यक्रम?
मेला मेला लगता था पूरा, अलग ही मजा आता था उस समय।
सही बात है, मतलब उस दौर से इस दौर में आपको बड़ा अंतर लगता होगा, है ना?
बहुत डिफरेंस आ गया, तो मोनोपोली हो गई ना, घर पे देख रहे हैं, मेहमान बैठा हुआ अपने मोबाइल पे लगे हैं आज के तारीख में।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो,
और एक चीज और महसूस किए होंगे प्रदीप जी आप, उस समय भले ही भीड़ ज्यादा हुआ करती थी, लोग आस पड़ोस के भले ही जुड़ा करते थे, लेकिन आपसी प्रेम इतना ज्यादा था कि कोई किसी को पराया नहीं समझता था, हर घर अपना लगता था।
अपने छत्तीसगढ़ में किसी को काका बोल दिया तो पूरे पूरे फैमिली पूरे गांव वाले काका ही बोलते थे।
लेकिन परिवर्तन का ये दौर शुरू हुआ है और अब देखिए हर कोई अपने अपने घर तक सिमट कर रह गया है।
जी हाँ, बहुत ज्यादा
ये अंतर बड़ा खलता है ना?
जी हाँ, संयुक्त परिवार भी खत्म हो गया, संकीर्ण हो गया दायरा पूरा।
बिल्कुल संगीन हो गया, और फिर से मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है लोगों को एकजुट होकर आपसी सौहार्द और मेल मिलाप की, ताकि हम आपस में फिर से एक मिल सकें, जुल सकें, आस पड़ोस वाले एक दूसरे से एक माहौल बनाए इस तरह का कि कभी ना कभी सप्ताह में एक बार आपस में मिलकर बैठा करें।
हमारे यहाँ सिमगा के इतिहास मैडम, आज तक यहाँ पे हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं हुआ,
बताइए। ये बहुत ही
यहाँ पे मुसलमान बहुल है, लोगों के कंपेयर में बराबरी के हैं। आज तक छोटे मोटे होते रहे उसको नहीं बोलते, बड़े रूप में कभी नहीं हुए यहाँ पे। नए नए बच्चे हैं, समझते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, काम कर लेते हैं।
बिल्कुल, यही प्रेम मिलाप ही तो ये है आपका, जो मिसाल है आपके उसमें जो आप बता रहे हैं, और इसी तरह का मुझे लगता है हर मोहल्ला गली में होना चाहिए, हर शहर में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। प्रदीप जी, यहाँ हम सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का एक और गीत।
चलिए मेरे अपने हुए पराए का बाहर बन के वो मुस्कुराए,
बहुत ही प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का अपने पराए फन का ये गीत।
बाहर बन के वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में, बाहर बन के वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में, बाहर
सप्ताह के श्रोता में हमारे आज के श्रोता हैं श्री प्रदीप जैन जी सिमगा से। प्रदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे पुराने दौर की और आज के दौर की, है ना
जी।
प्रदीप जी, जैसा कि पुराना दौर था, सब चीजें अलग हुआ करती थी, लोगों में मेल मिलाप एक हुआ करता था, आजकल सब एकल परिवार हो गया है। जैसा कि आपने कहा, संयुक्त परिवार पूरा टूट सा चुका है, है ना। तो इस समय बच्चों को लेकर आपको कुछ परेशानी लगती है कि पहले अगर मोहल्ले का या परिवार का कोई बच्चा बिगड़ता था, दूसरे घर वालों को ये अधिकार होता था कि वो उसको डांट दे या उसको घर में आके बता दे, आजकल ऐसा कमी आपको नहीं खेलती?
बहुत ज्यादा खेलती मैडम। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं हमको घर से 5 रुपए मिलते थे, हम 1 रुपए 25 पैसे सिमगा से रायपुर जाते थे, पुराने बस स्टैंड पे, मतलब जो राज टाकीज के पास है वहाँ पे
जी,
है ना। वहाँ से प्राइवेट गाड़ी चलती थी उस समय।
हाँ,
तो शाम को 6 बजे बाद वहाँ की गाड़ी रुकी रहती थी कि अमुक कलर का अभी तक सिमगा ने वो गाड़ी पे नहीं बैठने के लिए आया करके, वो हमको लेके आते थे और घर तक पहुँचा के जाते थे।
बताइए,
जमाना ऐसा था। आज ये है कि बाजू से वाला निकलता था, नमस्कार भी करता, हम सुन नहीं पाते नमस्कार कर रहे हैं हमको।
बिल्कुल, यही चीज चलती है, यही चीज बहुत चलती है। आपके सिमगा के परिपेक्ष में यदि बात करें प्रदीप जी, तो ये सिमगा रायपुर और बिलासपुर के बीच में आता है ना।
तो रायपुर से 45 किलोमीटर और सिमगा से बिलासपुर 70 किलोमीटर सेंटर में।
जी जी, तो आपके सिमगा के आसपास कोई ऐसे दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल या फिर देखने योग्य जगह कुछ है?
हमारी किस्मत में तो दामाखेड़ा जो है कबीर पंथियों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, जो वर्ल्ड में एक है।
हाँ हाँ, दामाखेड़ा का नाम
कबीर यहाँ से 10 किलोमीटर है और देश विदेश से बहुत पर्यटक आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ, महीनों का, एक महीने का मेला लगता है।
अरे वाह, ये कब लगता है? कबीर जयंती के आसपास?
जी हाँ, उसी समय फागुन के महीने में, होली के पहले लगता है।
जी जी, तो बहुत क्या है वहाँ की खासियत और क्या क्या है वहाँ पर?
वहाँ पे मठ बना हुआ है। हाँ। और जैसे अपन श्रद्धा से जो नारियल चढ़ाते हैं ना, जैसे ही चढ़ाते हैं तो प्राकृतिक रूप से दो टुकड़े बढ़ जाता है।
क्या बात कर रहे हैं,
बिल्कुल वैज्ञानिक ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी श्रद्धा से चढ़ाता है दो टुकड़े होकर आपके हाथ में आएगा वो।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी और आश्चर्यजनक बात है प्रदीप जी। मेरा भी जाना कभी हुआ नहीं है वहाँ, लेकिन आप बता रहे हैं तो आपके माध्यम से हम जरूर उस जगह पर जाएंगे और दर्शन भी करेंगे और उस चीज को देखेंगे भी।
बहुत श्रद्धा की जगह है वो
जी।
वैसे यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर आपको सोमनाथ पड़ता है।
हाँ हाँ,
सोमनाथ मेला भरता जहाँ पे, वहाँ भी संगम है खारून का और शिवनाथ का।
अच्छा,
वहाँ पे शिव मंदिर है और अच्छा पर्यटन स्थल होगी।
अच्छा, तो वहाँ क्या क्या देखने लायक चीज है? शिव मंदिर तो आपने बताया,
मंदिर है वहाँ पे, क्या प्रकृति जो जंगल है वो देखने लायक है, नदी के किनारे वगैरह।
ये कितना दूर पड़ता है आपके सिमगा से?
10 किलोमीटर, जैसे दामाखेड़ा वैसे ये है।
अच्छा, जैसे दामाखेड़ा है वैसे ये है। और एक और वहाँ पर चीज है, हमने सुना था बीचों बीच
नदी के बीच में तो मंदिर है एक छोटा सा।
जी जी,
वो आजकल एनीकेट में डूब गया है वो।
अच्छा, हाँ हाँ, और कोई आसपास कोई जगह?
एक यहाँ पे मोदा करके गांव है वही पास में, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, वो होली के दिन अपन कलर चेंज करते हैं मूर्ति को।
अच्छा।
होली का दान के दिन, हाँ, कलर चेंज होता है उसका, वहाँ पे मेला लगता है और वहाँ रात्रि में स्नान करने से नदी तालाब में स्किन जो इसी ओर होती है ना, ठीक हो जाता है।
ये तो बहुत ही अनोखी अनोखी जगह आप बता रहे हैं प्रदीप जी, और हमारा मन भी कर रहा है आपके माध्यम से कि हम तो एक भी जगह नहीं देख पाए हैं जैसा आप बता रहे हैं। रहते हम भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम तो ये सब चीजों के बारे में जान भी नहीं पाए आज तक।
अपने भी व्यस्तता में रहते कहाँ जान पाएंगे मैडम, सबकी बात ही नहीं है।
जी जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके, आपके माध्यम से बहुत अच्छी चीजें हमको जानकारी मिल रही है। तो जरूर हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है वो जरूर इस जगह पर जाएंगे और आप जैसा बता रहे हैं आपके माध्यम से वो दर्शन भी करेंगे और देखेंगे भी कि क्या है वहाँ की खासियत, कैसा उन लोगों को लग रहा है वहाँ पर जाकर।
जी
है ना
जी।
तो प्रदीप जी, यहाँ पर सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक और गीत।
अपने दोस्ती का सुना दीजिए
जी।
जाने वालों जरा देखो मुड़ करके, मोहम्मद रफी जी का।
बहुत ही प्यारा गीत है, मोहम्मद रफी जी की आवाज में है ये।
जो दोस्ती पिक्चर की बात आई ना,
हाँ।
तो उसमें क्या कि ग्रामीण पंचायत विभाग के द्वारा से हर गाँव में पिक्चर दिखाए जाते थे। प्रोजेक्टर से उस समय सुजाता, दोस्ती और परिवार, 3 पिक्चर दिखाई जाती थी उस जमाने में।
हाँ हाँ,
फ्री ऑफ कास्ट में पंचायत के द्वारा।
अच्छा।
हर गांव में दिखाया जाता था।
ऐसा क्या?
जी हाँ, 16 mm का प्रोजेक्टर रहता था, दिखाते थे गांव को जाकर।
हाँ हाँ,
उसमें हमने देखा था दोस्ती और सुजाता, परिवार, 3 पिक्चर देखा था उस जमाने में।
वो समय प्रोजेक्टर का ही हुआ करता था, उसी के माध्यम से लोग देखा करते थे फिल्में।
जी, मैं भी जो टाकी चला मैडम, उसमें ना प्रोजेक्टर जो मेरे पास था 16 अक्टूबर 1932 का था, RCA कंपनी अमेरिका का।
अलग अलग रील हुआ करते थे, रील बदलना पड़ता था थोड़ी थोड़ी देर में।
जी जी,
बड़ा मजा आया करता रहा होगा उस दौर पे।
जमाने ये लगता
जी
और भविष्य के इतिहास में चला गया हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं।
जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह।
सप्ताह के श्रोता में आज हम बात कर रहे हैं सिमगा के श्रोता श्री प्रदीप जैन जी से, और मैं हूँ आपके साथ सुजाता। प्रदीप जी, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
प्रदीप जी, हमें आप ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
श्रोताओं में तो जितने भी सीनियर हैं उनको सबको मेरा प्रणाम, और नए श्रोता जो हैं अति उत्साह में कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कार्ड शामिल नहीं हुआ, ईमेल शामिल नहीं हुआ करके। वहाँ पे उद्घोषक की भी बहुत सी तकलीफें रहती हैं, जिसके कारण उनको जिनको सबको मेंटेनेंस करा, अभी क्या ईमेल जो चालू हुआ है प्राय प्राय सभी क्षेत्रों में वो, और कार्ड वाले में तो तकलीफ होती ही है ना, तो थोड़ा इंतजार करें, धीरज रखें। श्रोता तो आखिर श्रोता है, आज निकल आपका नाम आए ही,
बिल्कुल
जब भी आएगा कार्ड हाथ में ईमेल आएगा। वैसे श्रोता सहनशील तो है, पर नए श्रोता कुछ है जो अधिक उत्तेजना में गलत कर जाते हैं, कभी कभी
थोड़े उग्र हो जाते हैं।
हो जाता है
जी। आप जैसे सीनियर श्रोताओं के माध्यम से हमारे जो नए श्रोता जो जुड़े हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। आपने बखूबी समझा हम जो उद्घोषक उद्घोषिकाएं हैं उनकी समस्याओं को, कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि ईमेल जो आते हैं और जो पत्र आते हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि दिख नहीं पाते, वहां पर सिर्फ फरमाइश बस दिखती है, कहां से किसने भेजा है वो पूरा डिटेल भी नहीं कई बार दिख पाता। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हम किस श्रोता का नाम लें और कहां से वो आए हैं उनका नाम लें, है ना। तो मेरे ख्याल से जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे, और अपनी जब फरमाइश भेजते हैं ईमेल के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से तो वो पूरा लिखें, हर तरह की चीजें उसमें लिखें, ताकि हम बखूबी उस पत्र को शामिल कर पाएं, उनका नाम पढ़ पाएं और वो भी खुश हो जाएं, है ना
जी। हाँ।
तो प्रदीप जी, अब हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का अंतिम गीत, तो यहाँ पर हमारे श्रोताओं को सुनाइए आप अपनी पसंद का ये कोई गीत।
यहाँ मैडम पतंग पिक्चर का गाना है, ये दुनिया पतंग है।
अरे वाह, बहुत ही प्यारा गीत है प्रदीप।
अपनी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, फरमाइश आपको।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को।
जी हाँ, सबके पसंद की चीजें हैं
जी। तो हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंग का ये गीत।
ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है।
ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है।
सब अपनी उड़ाए ये जान न पाए, कब किसकी चढ़े किसकी कट जाए। ये है किसको पता रुक बदले हवा, और डोर इधर से उधर हट जाए। हो वो डोर या कमान या जमीन आसमान, कोई जाने न बनाने वाला कौन है।
ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है।
धन वालों की पतंग सदा देखा है, गरीब से ही पेच लड़े है। गरूर का हुजूर सर नीचा सदा, जो भी जितना उठाए उसे उतनी पड़े। किस बात का गुमान भला करे इंसान, जब जाने न बनाने वाला कौन है।
ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने न उड़ाने वाला कौन है।
और प्रदीप जी यही हम आपसे विदा भी चाहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी जितनी बातें हैं हमसे साझा की, हमारे श्रोताओं को संदेश भी दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब कार्यक्रम पे मुझे यानी सुजाता शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे सिमगा के श्रोता श्री प्रदीप जैन जी से।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।